आप सुन रहे हैं खाना बदोशी सिर्फ ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अजात यायावर के साथ। नमस्ते मेरे दर्शकों, मैं अजात यायावर फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं खाना बदोशी का कोई अगला पड़ाव लेकर। आज मैं कहीं ठहरा तो नहीं हूं, लेकिन एक पुरानी स्मृति याद हो आई है तो वही आपके साथ साझा कर रहा हूं। बस ये भी बाल्यकाल की ही बात है। छोटा था, पैदल पैदल स्कूल पढ़ने जाता था। छोटा सा स्कूल था हमारा। जो हमारा स्कूल था उसके पास में ही एक संभ्रांत परिवार रहता था, पैसे वाला था। उस परिवार में एक पुरुष थे, देखने में बड़े अच्छे थे, एक महिला थी जो पति पत्नी थे, और एक उनकी बहू थी, सुंदर और उम्र यही कोई 25 से 30 साल के आसपास। स्कूल से लौटते लौटते घर देरी हो जाती थी, तो अक्सर ये होता था कि वो जो संभ्रांत परिवार था वो मुझे अक्सर बुला लिया करता था और ज़बरदस्ती कुछ भी खाने पीने को बिस्किट और ये दे दिया करता था। तो उस बाल्यकाल में भी एक चीज़ मैंने देखी कि सब कुछ था उस घर में, लेकिन एक अजीब सी कमी, एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सा दुख उस परिवार में मुझे दिखा था। कई बार कोशिश की लेकिन कभी जान नहीं पाया। एक बार वो राज खुल गया। वो राज वो जो 25-30 साल की महिला थी उन्होंने ही मुझे बताया। शायद मेरा बचपना देखा होगा कि ये तो मासूम बच्चा है, तो उन्होंने ही मुझे बताया। और वो सुना तो तब समझ में आया कि इस कमी का कारण क्या है। उनके अनुसार जो बात थी वो ये थी कि जब वो 12 साल की थी तो उनकी शादी हो गई थी। अच्छा परिवार, पैसे वाला परिवार, सब लोग बड़े खुश थे। किसी दिन किसी एक बात पर उसके पति और उसके ससुर, यानी जो इस समय बुजुर्ग आदमी हैं, उनके बीच में कुछ कहासुनी हो गई और उसके पति, चलिए उनका नाम पकड़ लेते हैं एक्स, उनके पति घर छोड़कर चले गए। वो उस समय कुछ 15 साल के रहे होंगे। घर छोड़ के चले गए और साधु हो गए। साधु भी कौन से, वो जो जमात वाले साधु होते हैं ना, हाथियों पर बैठकर, उस जमाने में आज भी आते हैं, गांव में आया करते थे। किसी रात किसी गांव में वो डेरा डाल देते थे, हाथी को जाके किसी बड़ के पेड़ के पास बांध देते थे। बस रात को हाथी वो बड़ के पत्ते और उसकी छाल खाता, और इधर ये अपने भजन कीर्तन करते, गांव वाले लोग इकट्ठे हो जाते, कुछ सत्संग हुआ होता, अगले दिन वो आगे बढ़ जाते। तो ये जो आदमी था एक्स, ये ऐसी कुछ जमात में शामिल हो गया था। सोचो उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। एक इकलौता बेटा, उनने उससे कहा लड़की से कि भाई तुम समझ लो, लड़की का नाम वाय है, कि बेटा तुम चली जाओ, तुम्हारी अभी बाल्यावस्था है, तुम 13 साल की हो, तुम्हारे माता पिता कहीं और शादी कर देंगे, तुम्हारी पहाड़ सा जीवन कैसे बीतेगा पता नहीं। लेकिन जितने समय वो साथ में रहे क्या प्रेम होगा, आज समझ में आता है, इतने साल बाद। तब समझ में नहीं आया था कि क्या प्रेम रहा होगा कि वो नहीं गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे वो मुझे छोड़ दें, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। वाह, क्या भाव रहा होगा। वो 13 से, वही मैंने बताया ना, 25-30 साल, फर्ज कर लीजिए कि वो 27 साल की हो गई होंगी, तो 14 साल से उनके पति बाहर थे जमात में। ऐसे करते करते 3 साल और बीते, 2 साल और बीते, सॉरी 3 साल नहीं, मैं भी थोड़ी अगली 2 क्लासेस में आ गया, उस परिवार के थोड़ा सा और करीब हो गया, बच्चा तो था ही। एक दिन मालूम पड़ा कि एक जमात हमारे गांव के पास वाले गांव में ठहरी हुई है, और वो लड़का जो 12-13 साल पहले चला गया था घर छोड़ के अपने पिता से किसी बात पर नाराज होकर, वो उस जमात में शामिल है और वहां ठहरा हुआ है। बाप को लड़के के पता चल चुका था कि मेरा बेटा वहां आया है, लेकिन बाप अंदर से तो रो रहा है, क्रंदन चल रहा है मन में, लेकिन ऊपर से सख्त है, वो जो बाप का स्वाभिमान है, फादर्स ईगो, वो आड़े आ रहा कि मैं क्यों जाऊं। मां उसकी खामोश सिसकियां, खामोश आंसू, और पत्नी, क्या कहा जाए पत्नी के बारे में। बहरहाल मुझ बाल बुद्धि को पता नहीं क्या सूझा, मैं गया, मन का भाभी मैं आपके पति को लेकर आऊंगा आज। एक फीकी सी मुस्कान उन्होंने मेरी तरफ फेंकी, सोचा होगा ये लड़का छोटा सा, इसकी तो मूंछों के बाल भी नहीं निकले अभी, और ये मेरे पति को लेके आ जाएगा 14 और 15 साल बाद। लेकिन मैं भी अड़ियल था साहब, चला गया। पहुंचा वहां, लड़के के पिताजी भी आ चुके थे, बाप जैसा कि मैंने अभी कहा ना कि बाप का स्वाभिमान, फादर्स ईगो, इट्स बिगर देन ऑलमाइटी व्हेन इट कम्स टू ऑन सम पॉइंट। यही हुआ, आया तो आंखों के क्रंदन है लेकिन भला बुरा कह के साधुओं को, लड़के को भी गाली बक के वापस चला गया। ये शब्द थे उनके कि तुझे क्या लगता है तेरे बिना हम जी नहीं सकते, हमें जीना आता है, तेरे जैसे कई लड़के आए चले गए, हमारा कुछ नहीं, हम जी लेंगे। तब मैं बच्चा था, समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आता है कि हाँ बात क्या थी। बहरहाल वो चले गए, मैं बाल बुद्धि पहुंचा उनके महंत के पास जो जमात ठहरी थी उनके पास, और कहा कि आज शास्त्रार्थ किया जाए और आपसे शास्त्रार्थ मैं करूंगा, यदि मैं जीतता हूं तो क्या जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। उन्होंने पूछा, महंत साहब ने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया कि अगर बेटा तू हार गया तो? मैंने कहा पूरे जीवन आपके लंगोट धोऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, यहीं से आपके साथ हो लूंगा। महंत लगता ज्ञानी थे, जीवन का सुख दुख उतार चढ़ाव देखा होगा, या शायद वो भी किसी ऐसे कमजोर पल में अपने घर से बाहर आ गए होंगे और उन्हें घर की याद सता रही होगी, शायद, पता नहीं जो भी था। लेकिन मेरी तरफ देख के वो मुस्कुराया, उन्होंने कहा कि ठीक है शास्त्रार्थ करते हैं। गांव के 200-400 लोग जमा हो गए, जब देखा है कि ये छटाक भर का लड़का शास्त्रार्थ करेगा तो सब में बड़ी जिज्ञासा जागृत हुई और सब इकट्ठे हो गए। मुझे आज भी याद, इतने साल हो गए मैं उनसे शास्त्रार्थ करने लगा, हालांकि घर में अक्सर माहौल वैसा था तो शास्त्रों की बात हुआ करती थी, हमारे एक शिक्षक थे, टीचर थे, वो भी शास्त्र पढ़ाया करते थे तो थोड़ा बहुत ज्ञान था, लेकिन इतना नहीं था कि उन्हें हरा पाऊं। अब मुझे समझ में आता है कि जब हमारे एक दूसरे पर शास्त्रों के वार प्रतिवार, यानी कि एक दूसरे पर हम हमला कर रहे थे, तब वो मुझे वैसे ही खिला रहे थे जैसे एक कहावत है ना कहीं पुराण में कि भोलेनाथ जब रावण उनसे लड़ने गया तो उसे खिला रहे थे, चूचे वार करवा रहे थे, वैसे ही हुआ। और बड़ा आज सोचता हूँ, देखिए बड़ा मतलब क्या था, वो चलता रहा और आखिरी में महंत साहब हार गए साहब मुझसे, है ना आश्चर्य की बात। आज समझ में आता हारे क्यों, मैं जीत गया, फूल के कुप्पा हो गया। मैंने कहा कि आपने कहा था तू जो मांगेगा दूंगा, तो मैं मांगू, बोला उनने बड़ी धीर गंभीर आवाज में, लगता उन्हें पता था मैं क्या मांगने वाला हूं। मांग, मैंने कहा ये जो ढोलक बजा रहा ना आपके यहां, ये चाहिए मुझे। जैसे ये शब्द मैंने बोले, वो जो ढोलक बजाने वाला था ना, उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया, बोले मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला महन साहब। महन जी ने कहा मैं वचन दे चुका हूं, तुझे मेरा वचन पूरा करना पड़ेगा। थोड़ी देर जद्दोजहद हुई, बहस हुई, लेकिन उनको मानना पड़ा, मैं उनको साथ लिए। एक वहीं का लोकल आदमी था, मुझे याद है उनके पास एक मोटरसाइकिल थी राजदूत, उस पर बिठाया हम दोनों को और हम गांव पहुंचे। अल सुबह, एकदम प्रभात उषाकाल, वो भाभी पासी में, एक उन जमाने में कुआं हुआ करता था, हैंडपंप और घर में नल वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पर कुएं पे वो अपना मटकी, जिसको बेड़ा बोलते, मटकी सर पे रखे हुए वो पानी भरने गई थी, और पानी भर के उन्होंने अपने सर पे वो मटकी या बेड़ा जिसको बोलते हैं वो रखा था, और हम तीनों पहुंचे। बाइक वाले ने हमें 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर उतार दिया और हम दोनों को, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरा रास्ता लगे, तुम्हारा सा रास्ता सामने है। मैंने हाथ पकड़ा उनका, गया। ओए होए 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 होए, सोचिए 14-15 साल 13 साल बाद वो सामने खड़ी थी, सर पे मटका भरे हुए पानी का, और वो सामने खड़े थे और मैं एक बच्चा दूर इस पूरे दृश्य का साक्षी था। बोला नहीं दोनों ने कुछ देर तक, ना उन्होंने ना उन्होंने, लेकिन बहुत कुछ बोल दिया। और फिर वो क्षण आया जो मुझे आज भी याद है। भाभी ने कहा मेरी तरफ देखते हुए, इधर आ लल्ला। पहुंचा उनके पास, माथे का बोसा लिया, कहा जो कहा वो मैं नहीं कह सकता, इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने मुझे पता नहीं किस दर्जे पे बिठा दिया और वो घर चले गए। आज भी वो हैं, सुखी हैं, परिवार है उनका, उनके बच्चे हैं। सालों हो गए मैं उनसे मिला नहीं, बुजुर्ग हो चुके हैं अब तो वो, लेकिन आज भी वो याद आता है तो कभी कभी मुस्कुरा देता हूं अकेले में। चलिए अगले पड़ाव पर फिर कोई अगली बात।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज सुनने के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।